الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء کی آیت نمبر 4 سے ہم آج شروع کریں گے. پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یتیموں کا مسئلہ چل رہا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مال کھانے سے منع کیا تھا اور پھر یہ حکم دیا تھا کہ یتیموں کے ساتھ جو خواتین بیوائیں ہیں, یتیموں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ عدل قائم رہے, تو ان کی ماؤں سے جو بیوہ ہیں ان سے شادی کر سکتے ہو تاکہ وہ گھر میں آ کر یتیم بچے کی نگرانی بھی کرتی رہیں. اور اس کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی تھی اور پھر یہ ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی قائم رکھی جائے گی. تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی شوہر کسی بھی سماجی ضرورت کی وجہ سے دوسری شادی کرے تو عدل اس کو قائم کرنا ہوگا. عدل کے بارے میں نے مختصر بتا دیا تھا کہ عدل کا مطلب 2 چیزیں ہیں, ایک اخراجات میں عدل جو بیوی کو دیے جائیں گے دونوں کو, اور دوسرا جو ہے وہ تعلقات میں جو زوجیت کے ہوتے ہیں, یہ لازمی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں جو بھی ہوتی ہیں ان میں عدل رکھا جائے گا. آج جو آیت ہے وہ آیت نمبر 4 ہے. فرمایا کہ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, عورتوں کو ان کے مہر دو جس طرح کے مہر دینے کا حق ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ, اگر وہ کوئی چیز خود اپنی مرضی سے چھوڑ دیں, مِنْهُ اس میں سے, نفسن خود وہ عورتیں, فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا, تو تم اس کو کھا سکتے ہو بغیر کسی تردد کے. اب جو نہلہ ہے اس کے بارے میں, حق مہر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ عورتوں کو جو شادی کے اوپر دیا جاتا ہے شوہر کی طرف سے اس بات کی علامت کے طور پر کہ میں اس خاتون کی ذمہ داری لے رہا ہوں, سنجیدہ ہوں اور اس کے اخراجات وغیرہ اٹھاتا رہوں گا, تو نکاح کے عمل کو سنجیدگی عطا کرنے کے لیے یہ دیا جاتا ہے. اس کو صدقہ کہتے ہیں واحد, اور اس لیے کہ یہ وعدے کے مطابق وعدے کی وفاداری ہوتی ہے, جو شادی والا وعدہ کیا جاتا ہے اس موقع پر, تو اس کو نہلا بھی حق مہر کو کہتے ہیں. لیکن اب ان کا حق مہر ادا کرو حق مہر سمجھتے ہوئے, کیونکہ یتیموں کا مسئلہ زیر بحث تھا, تو یہ خیال نہ کرو کہ یتیموں کے مسئلے کی وجہ سے حق مہر کھایا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم تو اس کے یتیم بچوں کے لیے شادی کر رہے ہیں تو حق مہر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو فرمایا کہ نہیں, تم ان عورتوں کو بھی حق مہر دو گے حالانکہ تم یتیموں کی وجہ سے شادی کر رہے ہو, تب بھی حق مہر کو ادا کرو گے. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ حق مہر کو حق مہر کی طرح ادا کرو گے, تو مطلب ہے عورت کی حیثیت اس کی ضرورت کے لحاظ سے جو حق مہر طے پانتا ہے وہی دیا جائے گا. یا نہیں کہ اس کا حق مہر تو 100,000 روپے بنتا ہے لیکن آپ کہیں جی میں تو کہ تمہارے یتیم بچے کی خاطر شادی کر رہا ہوں تو میں 50,000 دوں گا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. جو اس کا اپنے معیار کے لحاظ سے, اپنے ماحول کے لحاظ سے, اس کے فیملی میں, اس کے گھرانے میں جو حق مہر دیا جا رہا ہے وہی آپ دیں گے, اس کے باوجود کہ آپ اس کے یتیم بچے کی نگہبانی کے لیے شادی کر رہے ہیں. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا, اگر وہ خود کوئی چیز اس میں سے چھوڑ دیتی ہیں, تو تِبْنَ میں جو جبر کا الٹ ہے, یعنی اپنی رضا سے اپنی مرضی سے, وہ دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. تو مثال کے طور پر وہ اگر خود دیکھ رہی ہیں کہ آپ ایک ذمہ داری اٹھانے جا رہے ہیں تو چلو میں حق مہر کم لیتی ہوں, لیکن تابع کا مطلب ہوتا ہے جو وہ پسند کریں, جو ان کو سازگار لگے. تو جو وہ خود اپنے حق مہر سے اپنی مرضی سے تمہارے دباؤ کے بغیر تمہارے مطالبے کے بغیر اگر وہ چھوڑ دیں تو فَقُلُوهُ, تو تم وہ کھا سکتے ہو, یعنی اتنا حصہ تم نہ دو تو کوئی حرج نہیں. ہنیم مریہ, تم اس کو کھا سکتے ہو اپنی بغیر تردد کے, میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, اگرچہ ہوتا ہے کہ رغبت سے کھلے دل سے کھا سکتے ہو, یعنی اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی تردد کی بات نہیں ہے. तो जाहिर है कि ये जो औरतों का मसला था यतीमों का, उसके हल करने के लिए कुछ ना कुछ नरमी जो हो सकती थी वो अल्लाह ताला ने कर दी है। वो सिर्फ ये है कि खुद बेवा ये फैसला करे कि मैं कुछ हक मेहर अपने मेयार से कम ले सकती हूँ तो ठीक है, वरना मर्दों के लिए लाजम है कि वो हक मेहर पूरा अदा करेंगे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हक मेहर शादी के लिए खुदा की निगाह में कितना ज़रूरी है, उसी ज़रूरत के लिहाज से हक मेहर अदा होना चाहिए, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। बाज़ लोगों ने नेहला का तर्जमा यही किया है कि यह फरीज़ा है, इसको लाजमन अदा करोगे वाजिब के तौर पर। कुछ लोगों ने तर्जमा इसका किया है कि दिली रग़बत के साथ करोगे, मजबूरन नहीं, तो ये मानी में लिए गए हैं। लेकिन नेहला इब्ने अब्बास की राय है और बाज़ मुफस्सरीन और की भी है जिसमें मेरे उस्ताद भी शामिल हैं, उनकी राय है कि नेहला का मतलब हक महर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो उनका हक महर अदा करोगे हक महर के तौर पर, यानी जैसा जो उनका हक बनता है। तो यतीमों के लिए पहला ये कहा गया कि उनका पूरा माल दिया जाएगा। दूसरा हुक्म दिया गया था कि अपने घटिया माल को उनके अच्छे माल के साथ तब्दील नहीं किया जाएगा, और ये भी नहीं किया जाएगा कि उनका माल अपने माल में शामिल करके खा लिया जाए, और इसको कबीरा गुनाह करार दिया था। फिर कहा कि अगर तुम यतीमों के माल में अदल से डरते हो कि अदल नहीं कर सकोगे तो उनकी बेवा माओं से शादी कर लो, और ये शादियां 4 तक तुम कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम अदल कायम करोगे। अगर अदल कायम नहीं करोगे तो फिर एक ही शादी रखोगे, और यही ज़्यादा बेहतर है कि तुम फिर एक ही रखो, क्योंकि अदल के ज़्यादा करीब यही है। उसके बाद अब फरमाया कि इन औरतों से जब शादी कर रहे हो तो इनको भी पूरा पूरा हक महर अदा करोगे, जो उनकी हैसियत, उनके माहौल, उनके रवाज के मुताबिक है। इस्लाम में हक महर की तादाद मकदार मुकर्रर नहीं की गई है कि कितने पैसे दिए जाएंगे। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मामला हमारे यहाँ 32 रुपए वाला बनता है, वो दरअसल लड़के वालों की तरफ से नहीं गया था, लड़की वालों की तरफ से गया था। तो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना हक मेहर जो है, जो सईदा खदीजा के साथ शादी का है, वो आजकल के अल्फाज में करोड़ों रुपए में बनेगा। काफ़ी बड़ा हक मेहर था, पता नहीं कितने ऊँट थे और क्या कुछ था, मुझे इतनी गिनती याद नहीं है, तो उसमें बहुत कुछ दिया गया था। तो हक महर जो है वो ख़ानदान की हैसियत के मुताबिक होता है। अच्छा कमाने वाले अच्छा हक महर देंगे, कम कमाने वाले कम हक महर देंगे। इसी तरह लड़की के ख़ानदान की भी जो स्टेटस है उसको देखा जाता है कि एक ख़ानदान में करोड़ों रुपए का हक महर हो सकता है, एक में 10-20 रुपये हो सकता है, तो वो अपने इलाके, अपने घराने, उस माहौल के लिहाज से हक महर दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हक महर मुकर्रर नहीं किया है, ना किया जा सकता है, ना करना चाहिए। तो दोनों की हैसियत को देखकर, लड़के और लड़की की हैसियत को देखकर इसका फैसला घराने वाले करेंगे कि क्या लेना है क्या देना है। वला तो सुफाहा अमवालकुम अल्लती जालल्लाहु लकुम कियामा वर्ज़कूहुम फीहा वक्सूहुम वकूलु लहुम कौलन मारूफा। और तुम अहमकों को उनका माल न दो, वो माल जो अल्लाह ने तुम्हारे क्याम का जरिया बनाया है। अब अहमकों से मुराद भी यही यतीम है, क्योंकि जब बच्चा यतीम होता है तो बेवकूफ़ होता है, उसको पूरी अकल नहीं होती, तो इस मानी में आया है। यहाँ ये मतलब नहीं है कि आम ज़िंदगी के जो अहमक हैं उनकी बात नहीं हो रही, उनके बारे में जो भी अहले खाना फ़ैसला करें वो अलग है, यहाँ यतीमों ही की बात चल रही है कि यतीम बच्चे अभी छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको बाज़ चीज़ों की समझ नहीं होती, वो हमाकतें कर सकते हैं, अपना घर बेच दें, अपनी कोई चीज़ बेच दें बगैर सोचे समझे। तो फरमाया कि तुम ऐसे बच्चों को जो अभी छोटे हैं, हमाकत वाली उम्र के हैं, उनका माल उनको ना दिया जाए। देने से मतलब यह है कि उनके हवाले ना किया जाए, उनके तसर्रुफ़ में ना दिया जाए कि वो खुद जहाँ चाहें इस्तेमाल करें, ये पोजीशन उनको नहीं देनी चाहिए। अब आगे उसकी वजह बताई है कि माल क्या चीज़ है, ये तुम्हारे लिए कयाम है। जो माल है, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में देखें, मुल्कों में देखें, कौमों में देखें, तो पैसा एक बहुत कीमती चीज़ है, इसके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। पूरी ज़िंदगी का क़याम पैसे की बुनियाद पर है। पैसे से मुराद आपकी दाल रोटी भी है, आपके कपड़े भी हैं, आपका पैसा भी है, आपका जर जमीन भी है, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो सारा माल है। इस माल की बुनियाद पर ही जिंदगी चल रही होती है, और अगर ये बेवकूफ़ों के हाथ में दे दिया जाए तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा तो वो जो क्याम का जरिया था वो ख़त्म हो गया, तबाही हो सकती है कि पूरा घराना बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए फरमाया कि तुम बेवकूफ़ों को उनका माल उनके हवाले नहीं करोगे, क्योंकि माल ज़ाया करने की चीज़ नहीं है। इस पर इसी पर ज़िंदगी का इन्हिसार है। वर्ज़ुकूहुम फ़ीहा, अलबत्ता इनको उनके माल में से रिस्क देते रहो। यहाँ फ़ीहा का लफ्ज़ है जो चंद मुफस्सरीन ने इस पर तवज्जो दी है, अक्सर ने इसको फरामोश किया है, फ़ी को मिन्हा के माने में ले लिया है। लेकिन वर्ज़ुकूहुम फ़ीहा का मतलब है कि उस माल के अंदर उनको पालो, उस माल के अंदर उनको खाना फराहम करो, रिस्क दो, नेमते दो, जो भी है। ये नहीं, मिन्हा नहीं कहा कि उस रिस्क में से, उस माल में से उनको दो, ये नहीं कहा। मतलब ये है जुमले का कि एक होता है कि हमने कहा जी चलो ठीक है, 10 रुपए की रोटी सुबह मिल जाएगी, 10 की दोपहर को, 10 की शाम को। नहीं, अगर उनके वालिद ने अच्छी जायदाद छोड़ी है तो उस जायदाद के लिहाज से उनकी परवरिश होनी चाहिए। अगर वो दरमियानी ज़िंदगी गुजारने का माल छोड़ा है तो दरमियानी ज़िंदगी, अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारने का माल छोड़ा है माँ बाप ने तो उनको अच्छी ज़िंदगी दी जाएगी, तो उनकी रिस्क उनको दिया जाएगा उनके माल के मुताबिक, उनकी जो भी सूरत हाल है। फ़ीहा से ये मफ़हूम पैदा हो जाएगा कि उनको पालो उनके रिस्क के अंदर, यानी कि उनको उनका रिस्क थोड़ा थोड़ा करके देते रहो। वक्सुहुम, तो इसी तरह से उनको लिबास भी अता करो, तो गोया उनको खाना पीना भी उनके मेयार का हो जाए और लिबास भी उनके मेयार का हो जाए। ये कुरान के मंशा है कि अगर एक आदमी अमीर अमीर था, अपने बच्चों को हालत अमारत में छोड़ कर गया है, तो ये नहीं होना चाहिए कि उसको फ़कीरों की तरह पाला जाए। नहीं, जो उसके जायदाद की वक़्त है उसी के लिहाज से उसके यतीमों को पाला जाए। तो अब ये दो बातें इसमें, इस आयत में आ गई। एक ये कि अगर वो समझदार नहीं है तो उनका माल उनके हवाले नहीं किया जाएगा, और अलबत्ता उनको पालने में, उनके लिबास में, खाने पीने में, उनके बाप की छोड़ी हुई जायदाद के लिहाज से मेयार मुकर्रर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि गरीब छोड़ा है माँ बाप ने तो उसको सारा माल उड़ा दिया जाए, अच्छा खिलाया जाए, अच्छा पिलाया जाए, लेकिन वो बड़े होने से पहले ही माल ख़त्म हो जाए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि वो अमीर छोड़ा है, अच्छी जायदाद छोड़ी है पीछे, तो आप उसको फ़कीरों की तरह पाते हैं। नहीं, जो जिस तरह का माल छोड़ा है उसके बाप ने, उसी तरह से यतीम को पाला जाएगा। वकूलु लहुम कौलन मारूफा, और उनको भली बात कहते रहो। अब ये ज़ाहिर है कि जो बच्चे ज़रा इस तरह के होते हैं, मासूम, वो बात झगड़े ही पैदा करते हैं। ये फितरी सी बात है, मेरे बाप की जायदाद है, आपने अपने काबू में रखी हुई है, मुझे देते नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, इस तरह के झगड़े हो सकते हैं। तो फरमाया कि नहीं, जब तक वो समझदार ना हो जाए माल उनके हवाले नहीं किया जाएगा, और उनके साथ भले तरीके से पेश आया जाएगा, क्योंकि वो यतीम है तो उसको डांटा नहीं जाएगा, धक्के नहीं दिए जाएंगे, उसको सरजनिश नहीं की जाएगी। हाँ, जो तादीब होती है सिखाने के लिए, तरबियत के लिए, वो तो ठीक है, इसी को कौलन मारूफा कहा है। ये नहीं कहा कि उनको नरम बात की जाएगी, कौले मारूफ कहा जाएगा, यानी जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो मारूफ के मुताबिक है, अच्छी बातें हैं उसके की जाएंगी। तो अब इन तफसीलात से आप ये समझ सकते हैं कि यतीमों का मामला अल्लाह की नज़र में कितना अहम है। पूरा आप देखिए कि सफ़ा एक बनने वाला है। अल्लाह ताला ने यतीमों के केस को इस तरह से तफसील से बयान किया है। जितने कमज़ोर हैं उनका मामला यही है। ये जो सूरह है ये ख़वातीन के हवाले से भी है और यतीमों के हवाले से भी है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें इस पहलू से हैं कि मुआशरे में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब जो हदायत हैं उसमें ये कि हम यतीमों में से जो बच्चे मासूम हैं या छोटी उम्र के हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं है, तो उनको हम माल उनका हवाले नहीं करेंगे, लेकिन उनके मेयारे रिस्क के लिहाज से उनको पाले पोसेंगे। और उनके साथ भलाई भली बात कहते रहेंगे, डांटने डपटने का काम वो नहीं करेंगे। जो देखिए अब तो ये बहुत सारी चीज़ें वाजे हो गई हैं, पुराने ज़माने में इतना वाजे नहीं था, हमारे वालदैन भी बड़ी सख्ती करते थे और मारने में और घर से निकालने में और धक्के देने में और जलील करने में कोई उनको मुश्किल पेश नहीं आती थी। लेकिन अब नफ्सियाती तौर पर हमें मालूम है कि इससे शख्सियत किस तरह से डैमेज होती है। अब इसके ऊपर बहुत सारा लोगों ने इल्म इकट्ठा कर दिया है, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इन यतीमों की शख्सियत भी अच्छे तरीके से परवान चढ़े, उनके साथ भली बात की जाए, अच्छे सलूक में, तमीज़ के साथ, समझाने के अंदाज़ में, ना कि जलील करने के अंदाज़ में, ना कि उनको छोटा साबित करने के अंदाज़ में, ना कि एहसानात जता जता करके हमने तुम्हारी परवरिश की, हमने तुम्हारा सामान संभाल के रखा हुआ है, ये है वो है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए ताकि उनकी शख्सियत डैमेज ना हो। तो कूल लहुम कौलन मारूफा में ये सारे पहलू मुराद हैं। वालदैन तो खैर करते ही हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि पुराना रवाज तो यही था कि बच्चे भी यतीम ही समझे जाते थे अपने भी, उनको खूब मारा पीटा जाता था, डांटा जाता था, लेकिन अब हमें इसमें एहतियात करनी चाहिए। जो शख्सियत है इंसान की, ये नाकाबिले फहम तौर पर नाजुक भी है और नाकाबिले फहम सतह की मजबूत भी है। उसी माहौल में से कुछ पुरएतमाद निकल आएंगे, उसी माहौल में कुछ बेचारे मर खप जाएंगे, छोटे बन के रह जाएंगे। लेकिन बहरहाल हमें अपने मुआशरे में इंसान के एहतराम का फ़ज़ा कायम करनी चाहिए, बच्चों की शख्सियत में भी पूरी तरह से। बच्चे मैंने अपने बच्चे भी देखे, अपने नवासे भी देखे, तो बचपन से ही जैसे ही वो कुछ अपना रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी शख्सियत का इजहार करते हैं, अपनी मर्ज़ी का इजहार करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। उनको कोई कपड़े पसंद नहीं आए तो नहीं पहनेंगे, अभी हालांकि साल सवा साल के होंगे, जो चीज़ उन्होंने लेने का दिल में ख्याल आ गया है वो उसके पीछे भागेंगे। तो इसलिए हमें अब सोचना चाहिए कि इनको जो चीज़ें सिखानी है वो कैसे सिखाएंगे, जिन चीज़ों से रोकना है कैसे रोकेंगे, जिन चीज़ों को आमादा करना है वो कैसे करेंगे। उसमें बड़ी मेहनत के साथ वालदैन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वरना बड़े काम ख़राब हैं। और जो जदीद नस्ल तैयार होकर आ रही है वो चूँकि दौरे अबूरी दौर में है, बस हमारे वालदैन जिस तरह से हमारे ट्रीट करते थे, हम अगर उनको ट्रीट करेंगे और उन्होंने चीज़ें सीख ली हैं वो जो हमारे माहौल की नहीं थी, तो अब वो बिल्कुल ही और तरह के बच्चे बन गए हैं, नज़ाकत ज़्यादा पैदा हो गई है। अब बच्चे जिस तरह की आज़ादी हैं, मसलन हम अपने वालदैन तो चलो वालदैन थे, अपने असातिज़ा से बराबर की बात नहीं कर सकते थे। और अब स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि टीचर का नाम लें, मिस भी साथ नहीं लगाना, यानी बाहर स्कूलों के बारे में ये बताया जाता है कि आपने साथ मिस या टीचर नहीं लगाना, उसका नाम जो भी है वो आप लेंगे, बच्चे छोटे हैं। तो ये अब जब फ़ज़ा बनेगी तो इसमें जाहिर है कि हमारी जो तरबियत के सारे हैं, चूँकि हमारे यहाँ तो कोई सोच समझ के काम होता नहीं है, जिसका कोई ख्याल आ गया उसको अमल करना शुरू कर देता है। होना चाहिए कि कौमों को अपने अपनी तहजीब और अपने जो भी मेयारात हैं उनमें से हर साल गौर करते रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कायम रखनी है, कौन सी छोड़नी है, और ये सोच समझ के इकदाम होने चाहिए। हमारे यहाँ बस एक आंधी आती है, एक चीज़ आ गई तो आ गई, कोई ना रोकने वाला है ना कंट्रोल करने वाला है, जिसके नतीजे में नुकसान ही होता है कि माँ बाप एक जगह पे खड़े हैं और नीचे से औलाद खिसक के दूसरी जगह जा चुकी है, पता नहीं चलता क्या हो गया। तो वो इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कि मेरा ये जुमला बोलना हमारे लिए, वाले साहब का ये जुमला, मैं तुम्हारा बाप हूँ शर्म करो, ढेरों मानी रखता था, अब कुछ भी नहीं रखता, कोई मानी नहीं है इसके, मैं तुम्हारा बाप, कोई सादतमंद बच्चा होगा तो कोई जानता हो, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, देहातों में हो सकता है अभी भी ऐसा ही हो, लेकिन अब ये कि बाप है तो ठीक है, होंगे बाप, इससे क्या मतलब, क्या क्या हकूक कायम होते हैं, कुछ भी नहीं। तो क्यों? क्योंकि हमने वो उनको सिखाया है वो जो अंग्रेज़ सीखते हैं, और तहजीब हमारी अभी वही है, मैं उसी तहजीब का आदमी हूँ जिसमें वाले साहब आ जाएं तो सब घर खामोश हो जाता था, कोई शरारत अब नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, वो अगर हल्का सा हंकारा भी लेंगे तो सब चुप हो जाएंगे, ये अब कहाँ है, कोई भी नहीं। तो इसलिए अब फजा जिस तरह से बदल रही है तेजी के साथ, हमें भी उसमें ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज़ मैंने अपने घर में पैदा होने देनी है, कौन सी चीज़ बिलाशुबा ऐसी थी कि छोड़ी जा सकती है, लेकिन मिसाल के तौर पर वालदैन का एहतराम नहीं छोड़ा जा सकता, वालदैन की खिदमत नहीं छोड़ी जा सकती। तो इस तरह की चीज़ें हमें कायम रखनी है। इसी तरह जो मर्द औरत का मामला है, उसमें क्या चीज़ें हमने अपने घरों में आम करनी है, क्या नहीं करनी है। अब जो बच्चे जिस तरह से पल बढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग रखना नामुमकिन हो गया है, लेकिन क्या करेंगे। तो ये सारा कुछ सोच समझ के करना चाहिए। तो बहरहाल कुलु लहुम कौलन मारूफा का मतलब यह है कि उनकी शख्सियात, उनकी नफ्सियात, उनके एहतराम को सामने रखते हुए, उनकी परवरिश को सामने रखते हुए, अच्छा इंसान बनाने का तरबियत को सामने रखते हुए अच्छे तरीके से बात करेंगे। आगे फरमाया, वब्तुलुल यतामा हत्ता इज़ा बलागुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा फ़दफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम। ऊपर जब आप सुफा का जो हमने बयान किया कि ये यतीमों ही की बात हो रही है, तो अब बिल्कुल वाज़े हो गया। तो फरमाया कि वब्तुलुल यतामा, यतीमों को परखते रहो, यहाँ तक कि इज़ा बलागुन निकाह, वो बालिग हो जाए, निकाह की उम्र को पहुँच जाए। फ़ाइन आनस्तुम, तो अगर तुम देखो मिनहुम रुश्ता, उनके अंदर समझदारी को, फदफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम, तो उनका माल उनके हवाले कर दो। अब यहाँ पे बलूगत की जो किस्म है वो अल्लाह ताला ने दो कर दी है, एक यह है कि उम्र को पहुँच के निकाह की, और दूसरा यह है कि उनके अंदर रुश्त आ जाए। क्योंकि कहा गया था कि बेवकूफ़ों के हवाले माल नहीं करो, तो बेवकूफ़ी का उलट तो रुश्त है, वो जिस्मानी बलूगत नहीं है। जिस्मानी बलूगत तो होने के बावजूद कई लोग बिल्कुल ही सादा से होते हैं, मासूम से होते हैं, उनको कई चीज़ों की समझ नहीं होती। तो मतलब यह है कि वो बड़े भी हो जाएं और समझदारी भी तुम उनमें देखो। तो इसमें हमारे फुकहा ने कई तरीके बताए हैं कि उनको थोड़ा सा माल देकर किसी काम पे लगाओ, देखो कि क्या वो संभाल पाते हैं कि नहीं, या ज़ाया कर देते हैं, या गलत फैसले करते हैं, या उड़ा देते हैं। तो इस सब का लिहाज बार बार टेस्ट करते रहेंगे, जैसे ही बलूगत की उम्र को पहुंचने के करीब होंगे तो उसके ये इम्तिहानात शुरू कर देंगे। अगर वो साहब अच्छा निकलता है तो पूरा माल उसके हवाले कर देंगे कि लो भाई अब ये तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे वालिद ने छोड़ी थी, तुम रखो इसको। तो अब ऊपर जो वलातूतु सुफहा का मतलब ही समझ आ गया कि फदफऊ इलैहिम अमवालहुम, कि वो पूरा माल उनको हवाले करना है, और सुफा का मतलब भी समझ आ गया कि ये यतीमों ही के बारे में बात हो रही थी। अब ये जो कवानीन होते हैं वो हमारे लिए खुदा के अहकाम हैं, तो इनको इसी समझदारी के साथ खुद हमें भी अपनाना होता है कि ऐसा होना चाहिए कि मसलन किसी यतीम का मामला किसी बेवकूफ़ आदमी के हवाले नहीं होना चाहिए। ये खुद भी हमें यहाँ से तालीम निकल रही है कि अगर कोई यतीम है और उसको किसी ऐसे आदमी के हवाले कर दिए जो अपना माल ही नहीं संभाल पा रहा, तो ये काम ख़राब हो जाएगा, तो उसका माल ज़ाया कर बैठेगा। इसी बात के में एक पहलू को आगे बयान भी किया अल्लाह ताला ने, वो आगे चल कर देखते हैं। तो अब जो हुक्म हो गए हैं यतीमों के बारे में, वो नोट करने के हैं कि बहुत अहम है, पीछे जो दरस में उसको नहीं दोहरा रहा। यतीमों में से जो नासमझ बच्चे हैं, उनका माल उनके हवाले नहीं किया जाएगा, क्योंकि माल के अंदर अल्लाह ने जो ज़िंदगी गुजारने की ताकत रखी है, माल ज़ाया हो गया तो वो भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए लेकिन इन सादा लोग बच्चों को उनके माल के मुताबिक उनकी परवरिश की जाएगी, रिस्क दिया जाएगा, और उनको खाना पीना और लिबास दिया जाएगा। और इनके साथ मामला करते हुए अगर वो झगड़े अपने माल के लिए कुछ, तो कौले मारूफ के मुताबिक उनसे बात करोगे और इन बच्चों को, इन यतीमों को परखते रहोगे, यहाँ तक कि वो बड़ी बड़े भी हो जाएं और उनके अंदर तुम दानाई भी देखो, तो फिर उनका माल उनके हवाले कर दो। वला ताकुलुहा इसराफन व बेदारन अय यकबरू। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम फटाफट उनका माल खा जाओ इसराफ करते हुए और जल्दी जल्दी करते हुए, कि कहीं वो बड़े होकर मुतालबा ना कर दें, माल उनको वापस ना करना पड़े। अब ये जो हुक्म था इसमें दो पहलू हैं, एक इसराफ है और एक बिदार है, लेकिन असल मानी इसके ये हैं कि उनके बड़ा होने से पहले पहले उनका माल ख़त्म हो जाए। इसके आगे वजह भी आ रही है कि तो बाज़ औक़ात होता है कि माल को बच्चों को फालतू तो मसलन खाना इकट्ठा ही खाना है, तो यतीम आपके घर में रह रहा है और आपने खाना इकट्ठा ही खाना है, तो उसके पैसे भी डाल लिए, अपने भी डाल लिए, और खाना ज़रा अच्छा बना लिया और उसका माल खा गए। तो इस तरह की चीज़ें रोक दी अल्लाह ताला ने कि नहीं, उनको पूरी यानी उनको उनके रिस्क के मुताबिक परवरिश करना है, लेकिन ना इसराफ करना है। इसराफ का मतलब होता है फजूल खर्ची करना, हद से तजावुज़ करना। तो उसके खिलाने पिलाने में कोई ऐसा अमल ना करना कि इसराफ हो उसमें, कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करो, फजूल खर्च करो, या खर्च करते हुए हदूद से तजावुज़ करो। इसराफ का मतलब ये होता है। इसराफ किसी चीज़ में भी हो तो हो सकता है, सिर्फ खर्च करने में नहीं होता, बल्कि बोलने में भी हो सकता है, सोने में भी हो सकता है। कोई आदमी 24 घंटे सोया रहे, नमाजें निकल रही हैं, तो ये इसराफ हो गया। तो इसराफ किसी चीज़ में भी हो सकता है। हमारी उर्दू में ज़्यादा माल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में ये हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो फरमाया कि इनका माल, इनके जो अमवाल हैं, वो इसराफ करते हुए यानी फजूल खर्च करते हुए, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों पर खर्च करते हुए, या हदूद से तजावज़ करते हुए खर्च में ना खा जाओ। वबिदारन, और जल्दी जल्दी, यानी ताकि बड़ा होने से पहले पहले माल ख़त्म हो जाए, हम फ़ायदा उठा लें, क्योंकि बड़ा होकर वो मुतालबा कर देगा, हिसाब किताब करेगा, समझदारी के साथ पूछेगा जी वो चीज़ मेरी कहाँ गई, वो चीज़ कहाँ गई। तो अगर हमने पहले ही खा लिया तो चलो कहेंगे ख़त्म हो गया तुम्हारा माल, जो तुम्हारे बाप ने दिया था वो तुम खा पी गए हो, हमने तुम्हें पाल दिया और ये कर दिया वो कर दिया, तो उसको अल्लाह ताला ने रोका है कि नहीं, तुम उसका माल जल्दी जल्दी इस्तेमाल नहीं करोगे कि कहीं वो बड़ा होकर मसला ना पैदा कर दे। अब इसका ताकलूहा में फिर सवाल पैदा हो गया कि भाई अगर मिसाल के तौर पर मैंने किसी यतीम का माल अपने पास रखा हुआ है, तो क्या मुझे चट्टी पड़ी हुई है कि मैं उसमें से खाऊं भी कुछ ना, और सिर्फ यतीम को संभालते संभाल रहूं। नेकी का काम तो असल में यही है, लेकिन हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो यतीम के माल को संभाले। मसलन उसकी भेड़ बकरियां हैं तो क्या करेगा, उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, उनको चराने के लिए जाना पड़ेगा, या उसको चारा फराहम करना पड़ेगा, या किसी का कोई खेत है तो खेत में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तभी तो वो जायदाद महफूज रहेगी। तो इसमें फिर अल्लाह ताला ने एक हल पेश किया है, फरमाया वमन काना गनियन, तो जो साहिब सरवत हो तो वो बिल्कुल उनके माल को हाथ ना लगाए, यानी उसमें से कुछ नहीं खाएगा। वमन काना फकीरन, अलबत्ता जो मोहताज हो, फकीर हो, फलियाकुल बिल मारूफ, तो वो अपने कायदे के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक उसमें से अपनी मजदूरी वगैरह ले सकता, अपना हिस्सा ले सकता है। तो मिसाल के तौर पर उसने कारोबार में अब उसका पैसा लगा लिया, अपनी रेवड़ में अब उसका रेवड़ शामिल कर लिया है, गिन कर निशान लगा कर उसने कि ये मेरे यतीम भतीजे के या फलां के जानवर हैं, निशान लगा कर लिया। अब वो उसमें से मजदूरी के तौर पर कुछ ले ले, प्रॉफिट के तौर पर, कि चलिए अगले 10 बच्चे होंगे तो 10 में से 2 मेरे होंगे, 8 इसके होंगे, ठीक है, इस तरह का कोई हिसाब वो कर सकता है। तो जो गनी है, जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाए, वो इस्तेफाफ से काम ले, यानी हाथ को रोके रखें। और अलबत्ता जो फ़कीर है, वो अगर किसी यतीम का मसला को उठाता है तो उसको अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि वो अपनी मजदूरी के एतबार से, सर्विसेज के एतबार से, जो भी काम कर रहा हो तो उस माल को कारोबार में लगा ले, या या जानवर है उनको पाल रहा है, या खेती बाड़ी कर रहा है, तो वो जिस तरह किसान खेती बाड़ी में हिस्से रखते हैं, ठेके पे देते हैं, उस तरह का कोई काम कर लेता है, तो कोई हरज की बात नहीं है। आगे फरमाया फ़ैज़ा दफ़ा तुम इलैहिम अमवालहुम फ़अशहदु अलैहिम, तो जब तुम उनका माल उनके हवाले करो तो उनके ऊपर गवाह भी ठहरा लो। ये यतीमों के बारे में इस सूरा में आखिरी हदायत है कि माल अदा करते वक्त, ख्वा फ़कीर हो ख्वा अमीर आदमी हो, दोनों को चाहिए, ख्वा थोड़ा हो ख्वा ज़्यादा हो, चारों सूरतों में चाहिए कि माल हवाले करते हुए गवाह बना लिए जाए। माली मामलात में आयत दैन हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम जो चीज़ें लंबे अरसे के लिए किसी के पास रहती हैं, खा कर्ज़ हो, खा अमानतें हों, खा ये यतीमों का माल हो, इसको लिखत पढ़त के साथ, गवाहों के साथ करना चाहिए ताकि झगड़े पैदा ना हों। तो ये मामला उस आयत की रोशनी में सूरह अल-बकरा में गुजर चुकी है, और इसकी रोशनी में मिलकर पूरी बात ये बनेगी कि हर चीज़ को लिख कर गवाहियों के साथ किया जाए। अब पूरी इस कानून के जान इस जुमले में है, वकफा बिल्लाही हसीबा। देखो, खाओगे उसका माल या दयानतदारी से खाओगे, इसराफ से खाओगे, बिदारन खाओगे, जिस तरह से भी खाओगे, अल्लाह हिसाब किताब के लिए काफ़ी है। दुनिया में हो सकता है तुम लिखत पढ़त में भी धोखे दे लो, बच्चों को खिलाते पिलाते भी खा जाओ, लेकिन कल मेरे पास तो आना ही है, तो हिसाब ले लूँगा मैं। तो वकफा बिल्लाह हसीबा। मज़हब के अंदर और दीगर कवानीन के अंदर फ़र्क यही है। मज़हब जो है वो खुदा खौफी के साथ मुझे एक बंद कमरे में भी गुनाह से रोकता है, लेकिन जो सादा कवानीन है दुनिया के, वो बंद कमरों में मुझे नहीं रोक सकते। तो इसलिए मज़हब जो है वो इंसानों को एक बुलंद जगह पर ले जाता है, वो बुलंद जगह जो है वो आदमी को पाकीज़गी अदा करती है। लेकिन दुनियावी कवानीन है जिन पर सिर्फ हुकूमत का रोब होता है, खैर मुसलमान उनमें भी खुदा ही के वादे के मुताबिक चलता है, लेकिन बहरहाल जो लोग खुदा को नहीं मानते उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ कवानीन सिर्फ ज़ाहरी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ज़ाहरी चीज़ें होती हैं। जब डर और खौफ ख़त्म हो जाए कि जुर्माना हो जाएगा, सज़ा मिलेगी, तो आदमी वो काम करने लग जाता है। जबकि मजहबियात में, खुदा के बंदों में ये चीज़ नहीं होती, वो अकेले में भी चीज़ों से बच रहे होते हैं, इसलिए उनके अंदर एक पाकीज़गी पैदा होती है, इसी को तज़किया कहा जाता है। ये मादी कवानीन दुनियावी कवानीन पैदा नहीं करते, ये सिर्फ खुदा के दिए हुए कवानीन खुदा खौफी की वजह से तज़किये का बायस बनते हैं। तो अब इस आयत के बाद वकफा बिल्लाही हसीबा, हर आदमी जो यतीमों का माल खा रहा है, खा चुका है, उसको अभी भी तौबा करने का मौका है। अगर उसके सांस चल रहे हैं तो वो कम अज़ कम वापस कर दें या माफ़ करा लें, वरना कल क़यामत वाले दिन खुदा ने हिसाब ले लेना है। और ये याद रखिए कि गुनाहों की जो सज़ा है वो मकदार को देख कर नहीं होती, वो उन तकलीफ़ों की वजह से होती है जो दूसरे सह रहा होता है, ये वाज़ेह रहना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर आपने एक बेवा का 5 मरले का प्लॉट छीना है, तो अब जो धक्के खा रही है, उसके पास घर कोई नहीं है, वो कहीं सड़कों पे रह रही है या लोगों के घर में किसी के अजीज़ के यहाँ जाकर वहाँ सितम सह रही है, तो सारे आपके खाते में लिखे जाने हैं। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ गफूर रहीम की बात नहीं की है, वकफा बिल्लाही हसीबा की बात की है कि अल्लाह ताला एक एक पाई का हिसाब करेगा, और हसीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हसीब में दवाम पाया जाता है, यानी ऐसी सिफत के जिसमें इनकिता नहीं है, जिसमें कोई तातुल नहीं है। तो वकफा बिल्लाही हसीबा, अल्लाह ताला एक एक लम्हे, एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। बहुत सख्त आयत है अगर आप देखें तो, वकफा बिल्लाही हसीबा। तमाम कवानीन में ऐसा ही है, आगे विरासत में भी देखिएगा कि अल्लाह ताला किस तरह से उसको बयान करेंगे। तो विरासत का कानून भी यतीम हुई की वजह से जेरे बहस आएगा, क्योंकि अब अल्लाह ने कहा है कि उनका माल उनके हवाले करो, तो 2 यतीम है तो कैसे हवाले करेंगे, 5 यतीम है तो कैसे हवाले करेंगे, तो इसलिए कानून आगे विरासत का इसी में आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी इसी सख्ती के साथ अल्लाह ताला ने बात कही है। तो किसी का पैसा खा जाना, चोरी हो, विरासत हो, यतीम का माल हो, ये इस्लाम में कबीरा गुनाहों में है। इसीलिए चोरी की सज़ा हाथ काटना है, चोरी की सज़ा हाथ काटना है, छोटी छोटी सज़ा नहीं है, बहुत सख्त सज़ा है, क्योंकि आप उस कानून को तोड़ते हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कायम कर रखा है, और खुदा के साथ सरकशी करते हैं कि अल्लाह ने कह रखा है कि किसी का माल चुराया नहीं जाएगा और आप चुराने चले गए। एक है कि मैंने कह रखा है कि ऐसा ना करना, ये कुछ इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कह रखा है। तो इसलिए इस्लाम के अंदर सजाएं सख्त भी हैं, क्योंकि दो गलतियां हो रही होती हैं, एक लोगों के हक मारे जा रहे होते हैं, एक अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी हो रही होती है। तो वकफा बिल्लाह हसीबा में अल्लाह ताला ने यह बात बयान कर दी कि सारे यतीमों का मैं निगरान हूँ, हर हर लम्हे में मैं निगरान हूँ, हर हर लम्हे का हिसाब हो रहा है, एक एक पाई का हिसाब हो रहा है, ये वाज रहना चाहिए। आगे तमहीद बांधी है अल्लाह ताला ने वरासत के कानून की, और इसमें भी देखिए कि क्या क्या कुछ अल्लाह ताला ने तोड़ दिया है। अरबों के यहाँ जो रस्म और रवाज थे उनका तोड़ने का बयान क्या है, लिर्रिजाल नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानी वल्लकरबून, मर्दों के लिए एक हिस्सा है जो तरका छोड़ें वालदैन या रिश्तेदार, उसमें मर्दों का हिस्सा है। वलिन निसाई नसीबुन, और औरतों के लिए भी हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदानी वल्लकरबून, जो वालदैन छोड़ें या रिश्तेदार छोड़ें उसमें औरतों के लिए भी हिस्सा है, मर्दों के लिए भी हिस्सा है। ये अरबों के सारे रस्म और रवाज जो वरासत के बारे में थे उनको तोड़ रही है आयत, औरतों को वरासत में जैसे हम नहीं देते, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भी इसी तरह अरब भी नहीं देते थे, सिवाय इसके के बेटी ही सिर्फ हो तो फिर मजबूरी हो जाती थी बाउस का, लेकिन लड़के ले जाते थे या मिला जुला ही था, जैसे हमारे यहाँ मिला जुला है इसी तरह का, तो उसको अल्लाह ताला ने तोड़ दिया कि नहीं अब हिस्सा मुकर्रर हो जाएगा, मर्दों के लिए भी एक हिस्सा मिलेगा, औरतों को भी, यानी लड़कों को भी लड़कियों को भी जो वालदैन छोड़ें या रिश्तेदार छोड़ें। अब दो जगहों के हम वारिस हो सकते हैं, वालदैन के वारिस हो सकते हैं, रिश्तेदारों के जिनमें बहन भाई है चचा ताया है कोई भी हो सकता है जिनके हम वारिस बन सकते हैं। तो वरासत का जाब्ता दो तरह से कायम कर दिया, एक वालदैन की तरफ से, एक रिश्तेदारों की तरफ से। तो मसलन अगर मैं फौत होता हूँ और मेरे बच्चे नहीं हैं तो मेरे भाइयों को, मेरी बहन को मेरी जायदाद तकसीम हो जाएगी, तो अकरबून हो गए। ठीक, तो वालदैन और रिश्तेदारों में से हिस्सा किस किस को मिलेगा, बच्चों को भी और बच्चियों को भी। मिम्मा कल्ला मिन्हु अव कासुरा, खा जायदाद जो छोड़ी गई है, तरका जो छोड़ा गया है, वो खा थोड़ा हो या ज़्यादा हो, 10 रुपए भी छोड़े गए हैं तो बांटे जाएंगे, लड़कियों को लड़कों का हिस्सा और लड़कों को लड़कों का हिस्सा या मर्दों को मर्दों का हिस्सा, नसीबन मफरूजा, ये मुकर्रर करदा फ़र्ज़ करदा हिस्सा है खुदा की तरफ से। ये उसकी तमहीद है जो आगे कानून आ रहा है, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली क्लास में हम करेंगे। ये बात भी इन्हीं यतीमों के हवाले से शुरू हुई है कि जब माल हवाले करना है तो किस तरह हवाले करना, उसका कायदा क्या होगा, तो बता दिया कि यतीम बच्ची हो या यतीम बच्चा हो, दोनों का उसके अजीज़ों के और वालदैन के माल में दोनों का हिस्सा है। तो यहाँ रोक लेते हैं क्योंकि अगली आयत शुरू करने से पहले नमाज पढ़ लेते हैं।